आकाशवाणी है। अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश बड़े पैमाने पर डिजिटल रूप से जुड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवा नवोन्मेषकों के साथ बातचीत की। सत्र के दौरान मिस्टिक ओरिजिनल्स की टीम लीडर ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बताई गई सुरक्षा चुनौती पर अपना समाधान प्रस्तुत किया, जिसे माइक्रो डॉपलर आधार पर पक्षियों और ड्रोन के बीच अंतर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर संबोधन के दौरान टीम के समर्पण की प्रशंसा की। जब प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या समाधान वस्तुओं की गति, दिशा और दूरी की भी पहचान कर सकता है, तो टीम के एक सदस्य ने जवाब दिया कि इन सुविधाओं को जल्द ही एकीकृत किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब सभी के प्रयास शामिल हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश नई चुनौतियों का सामना कर रहा होता है, तो नवाचार से जुड़े युवा असाधारण समाधान प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में तमिल कवि और स्वाधीनता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचनाओं के संग्रह का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम भारती का समृद्ध भारत और प्रत्येक व्यक्ति के सशक्तिकरण का दृष्टिकोण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि स्थानीय निकायों की आत्मनिर्भरता और उनकी क्षमता के आधार पर ही विकसित भारत की नींव रखी जा सकती है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतें अपने राजस्व स्रोतों को विकसित करके ही आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि देश की लगभग 64% आबादी गांवों में रहती है, इसलिए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गांवों और ग्रामीणों को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जयाद अल नाहयान चौथी रणनीतिक वार्ता और 15वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक पोस्ट में संयुक्त अरब अमीरात के नेता का स्वागत करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत और यूएई के बीच बहुआयामी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में शेख अब्दुल्ला बिन जयाद अल नाहयान के साथ रणनीतिक वार्ता करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा में कल ध्वनिमत से रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया। विधेयक में रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन और रेलवे बोर्ड तथा उसके स्वतंत्र रूप से कार्य निष्पादन के अधिकार को बढ़ाने के प्रावधान हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य रेलवे में कानूनी ढांचे को सरल बनाना है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं भंडारण की सीमा को संशोधित करने का निर्णय लिया है। समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा घटा दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि विभिन्न प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत 54 करोड़ जनधन खाते और 52 करोड़ से अधिक जमानत मुक्त ऋण मंजूर किए गए हैं। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप में गत चैंपियन भारत को अपने तीसरे मैच में 3 बार की विजेता चीन से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग चरणों में आयोजित किए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 23 से 27 जनवरी तक आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसी बर्फ पर खेली जाने वाली प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा, जबकि जम्मू और कश्मीर 22 से 25 जनवरी तक अल्पाइन स्कीइंग, नार्डिंग स्कीइंग, स्कीइंग, पर्वतारोहण और स्नोबोर्डिंग जैसी बर्फ पर खेले जाने वाली प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।